तो आइए सुनते हैं भ्राता ओम प्रकाश जी को। आपने अपनी सेवाओं के दौरान बीहड़ चंबल के जो बीहड़ हैं उनके बागियों को और डाकुओं को के उनके जीवन का अध्ययन किया है। इन्होंने जुनाइल कोर्ट के जो किशोर होते हैं उनके व्यवहारों पर इन्होंने अध्ययन किया है और अपने इस रिपोर्ट सरकार को दी है। आप 1996 में पहली बार ज्ञान सरोवर के प्रशासनिक विभाग ज्ञान सरोवर में प्रशासनिक विंग की सेवाओं में आए थे, उनके कार्यक्रम में आए थे और उसके बाद से आपने जिला कारागारों में कैदियों के लिए बहुत सारे कार्यक्रम रखवाए और जिला विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन करवाया, जिसके तहत जो अपराधी होते हैं, एक होता है सिचुएशन के तहत अपराधी और एक होता है आदतन अपराधी। जो सिचुएशन के तहत अपराधी हुए होते हैं उनको आदतन अपराधी होने से बचाया जा सके, इसके लिए आपने बहुत सारा कार्यक्रम किए हैं और उनको मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए, उनके जीवन को लॉफुल कैसे बनाया जाए, इस पर इन्होंने कार्यक्रम किए हैं बहुत सारे। अब हम इनका सबसे पहले मैं बहनों से स्वागत के लिए कहूंगा। बहने बैज पहनाकर और प्लांट देकर भाई जी का स्वागत करें और आप जोरदार तालियों के साथ भ्राता ओम प्रकाश जी का स्वागत करें और हम अभी इनसे अनुभव सुनेंगे। आप मुझे अनुभव सुना रहे थे कि जो डाकू पंचम सिंह हैं उनके गुरु हैं, आप इनसे सबसे मिले हैं और उनके साथ बात की है। डाकू पंचम सिंह जी के कई कार्यक्रम इन्होंने जेलों में रखवाए हैं, कैदियों के व्यवहार परिवर्तन के लिए इन्होंने बहुत सारे प्रयास किए हैं। तो आइए सुनते हैं भ्राता ओम प्रकाश जी को। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। स्पिरिचुअल पावर, हेल्दी एंड लॉफुल सोसाइटी के ऊपर जो ये कॉन्फ्रेंस चल रही है पिछले दो दिनों से, उसमें आप सभी आदरणीय भ्राता और बहनों का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप लोगों ने प्रत्येक सेशन में या जो भी दीदी या भ्राता यहां पे आए हैं, एक बात अवश्य सुनी होगी कि हम पॉजिटिविटी को बनाए रखें, अपनी सोच हमेशा सकारात्मक रखें, पॉजिटिव रखें। हम जो भी यहां आज चर्चा करेंगे एकदम प्रैक्टिकल करेंगे, हम सकारात्मक सोच तो बनाए रखें लेकिन हमारे अंदर जो निगेटिव थॉट्स हैं, जो नकारात्मक सोच है वो आती ही क्यों है? हमारे अंदर क्यों नकारात्मक सोच आती है? सबके अंदर आती है, हमारे अंदर भी आती है। एक चीज आपने और सेंटर पे भी सुनी होगी जहां जाते होंगे, यहां भी सुनी होगी, हम सब लोग एक सोल हैं, आत्मा है और आत्मा की खुराक है शांत रहो और पवित्र रहो। ये आत्मा की खुराक है, ये हम सब लोग जानते हैं। जिस तरीके से आत्मा की खुराक है शांत रहो और पवित्र रहो, ठीक उसी तरीके से हर एक इंसान को जो इस धरा पे है, किसी भी देश का हो, उसको सामाजिक और संवैधानिक न्याय चाहिए ही चाहिए। हम जितने लोग यहां हैं सबको संवैधानिक न्याय चाहिए और सामाजिक न्याय चाहिए। और जब ये संवैधानिक और सामाजिक न्याय हमको नहीं मिलता तो हमारे अंदर नकारात्मक सोच डेवलप होती है। हमारा पूरे सरकार का, पूरे समाज का, सबका यही प्रयास होता है कि हम व्यक्ति को सामाजिक और संवैधानिक न्याय प्रदान कर सके। हमारे सरकार में इसकी मुकम्मल व्यवस्था भी है, लेकिन कहीं न कहीं पे इम्प्लीमेंटेशन जब होता है तो कोई कमी जरूर है, जिससे हमारे समाज के लोगों को सामाजिक और संवैधानिक न्याय नहीं मिल पाता। व्यक्ति को जब ये न्याय नहीं मिल पाता तो वो क्या करता है? वो सबसे पहले अपने परिवार में अपनी बात रखने का प्रयास करता है कि देखिए यहां हमारे साथ अनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है। दूसरी बात, जब परिवार में भी उसको नहीं सुना जाता तो वो समाज में अपनी बात रखता है, आस पड़ोस जहां तक उसके संबंध हैं, रिलेशन है, वहां पे अपनी बात रखता है कि हमारे साथ अमुख व्यक्ति या अमुख इंस्टीट्यूशन अन्याय कर रहा है, आप हमारी मदद करें। अब समाज और फैमिली में हमारे वैल्यूज कम हो गए, नैतिक मूल्य कम हो गए, और वहां पे भी जब हमारी बात नहीं सुनी जाती तो हम कोर्ट और कचहरी में जाते हैं। आप देखिए ये हमको परेशान कर रहे हैं और ये हमको न्याय नहीं दे रहे, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम वहां जाते हैं। बहुत स्पष्ट है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इनसे ग्रसित होकर, इनके कब्जे में आकर जब कोई व्यक्ति किसी की जमीन पे कब्जा करता है, किसी को मानसिक टॉर्चर देता है या और किसी तरीके से उसका घर हथियाने की कोशिश करता है, उसकी संपत्ति हड़पना चाहता है, तो वो सामाजिक में जाता है, फैमिली में बताता है, फिर कोर्ट कचहरी में जाता है। समाज और फैमिली में वैल्यूज कम होने के कारण, नैतिक मूल्यों की कमी होने के कारण उसकी आवाज नहीं सुनी जाती और वो कोर्ट में मुकदमा दायर करता है। मुझे ज्ञात ही नहीं है कितनी महिलाओं और पुरुषों की सेवा में रहते हुए काउंसलिंग की है, जब वो कोर्ट में चले जाते हैं तो फिर उनकी बात बनती नहीं, बहुत कम सुलह होता है। दूसरा पक्ष कहता है, अच्छा तुमने हमको कोर्ट कचहरी का दरवाजा दिखा दिया, अब तो हम आपकी बात मानेंगे नहीं, किसी कीमत में नहीं मानेंगे, और वो कोर्ट कचहरी में चला जाता है। फिर वहां पे क्या होता है, वहां पे जो मुकदमा तीन चार पेशी में खत्म हो जाना चाहिए उसके लिए उसको सालों साल दौड़ना पड़ता है। तमाम तरीके के वहां बैरियर्स हैं, व्यवस्था ही ऐसी है, पेशी पे पेशी, तारीख पे तारीख, और उसको सालों साल कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं छोटे छोटे मुकदमों में। और कहीं सिविल मुकदमा हुआ, दीवानी हुई, तो वो जीवन भर मुकदमा लड़ता है। पिता ने मुकदमा दायर किया, पिताजी लड़ते लड़ते परम धाम को चले गए, बेटा मुकदमा लड़ रहा है, मुकदमे में न्याय नहीं मिला, मुकदमे में उसको न्याय नहीं अभी तक मिला। 20-20, 25-25 साल से मुकदमा चल रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिला। अब जब उनको न फैमिली में न्याय मिला, न समाज में न्याय मिला, और कोर्ट कचहरी में वो बीसियों साल से दौड़ रहे हैं, अपनी मेहनत की कमाई खर्चा कर रहे हैं और दिमागी टेंशन भी झेल रहे हैं, उसमें जीवन से निराशा और कुंठा हो जाती है, मैं क्या कर रहा हूं। या तो वो अपना मन मार के शांत बैठ जाता है, निराशा और कुंठा लेके चुपचाप घर बैठ जाता है, या फिर दूसरा पक्ष, कहीं उसने न्याय पाने के लिए अपने स्तर से प्रयास किया कि मैं इस दूसरे तरीके से न्याय प्राप्त कर लूं, तो समाज उसको अलग कर देता है, सरकार उसको बागी घोषित कर देती है, हम उसको अपराधी कहने लगते हैं, ये क्रिमिनल है। हम उसकी बैकग्राउंड में नहीं जाते कि वो क्यों ही उसने ये काम किया, ये कदम क्यों उठाया उसने, हम सीधे सीधे उसको क्रिमिनल घोषित कर देते हैं और सरकार उसे बागी घोषित कर देती है। मैं यहां पे बहुत स्पष्ट बताना चाहूंगा कि मैंने करीब 36 साल गवर्नमेंट जॉब किया, बहुत कम उम्र में सरकारी नौकरी में आ गया था, और अपनी सेवा काल में हमने कारागार में बहुत से बंदी भाइयों का इंटरव्यू लिया और बहुत से चंबल के दुर्दांत बागियों डकैतों का केस स्टडी की और उनका अध्ययन भी किया, तो उन्होंने स्पष्ट बताया कि हमने पहले सामाजिक न्याय के लिए समाज का दरवाजा खटखटाया, फिर हमने कानूनी न्याय के लिए संवैधानिक कोर्ट कचहरी का दरवाजा खटखटाया, और जब उससे हमको नहीं कोई निर्णय मिला तो हमने फिर यह कदम उठाया। हम भी समाज के एक सभ्य और इज्जतदार नागरिक थे, अगर ये हम कदम न उठाते तो शायद हम समाज में जी ना पाते, और अब समाज हमको अपराधी घोषित कर दिया, अपराधी कहता है, बताइए इसमें मेरा क्या दोष है, मेरा क्या दोष है इसमें। बात यहां पे दो दिन से चल रही है स्पिरिचुअल पावर की, जब कोर्ट और कचहरी और कानून से न्याय नहीं मिला तो कल भ्राता ब्रजमोहन भाई जी ने स्पिरिचुअल पावर पे बहुत फोकस किया था, स्पिरिचुअल पावर पे हमारा ध्यान खींचा था। स्पिरिचुअल पावर की मैं एक सत्य घटना आपको सुना दूं, आप सभी लोग जानते हैं यह घटना एकदम सत्य है कि हमारे इस ब्रह्मा कुमारी संस्थान की वर्ड की प्रशासिका दादी प्रकाशमणि थी। दादी प्रकाशमणि एक बार इस देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पास मिलने के लिए गई। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उनसे एक क्वेश्चन किया, दादी से एक क्वेश्चन किया कि आप हृदय परिवर्तन की बात करते हो मुगावली जेल ग्वालियर में, एमपी की मुगावली जेल में कुछ सरेंडर्ड किए हुए कैदी हैं, आप उनका हृदय परिवर्तन करके दिखाओ। उस समय मुगावली जेल में डाकू पंचम सिंह और डाकू मोहर सिंह जैसे दुर्दांत दस्यु जेल में मौजूद थे, और वो इतने होशियार थे कि कुछ लोगों ने ही समर्पण किया था और बाकी उनका गैंग चंबल में था। उनको भ्रम था कहीं सरकार ने हमारी मांगे ना मानी, हमारे साथ अच्छा बर्ताव ना हुआ तो आप लोग तो बाहर हो, हमें निकाल लेना, हम फिर वही काम शुरू कर देंगे। जब दादी से ये इंदिरा गांधी जी ने रखा कि आप हृदय परिवर्तन की बात करते हो, तो मुगावली जेल में जाके कुछ लोगों का हृदय परिवर्तन करके बताओ। आपको जानकारी होना चाहिए, हमारी दादी ने विद इन सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड, इस चैलेंज को स्वीकार कर लिया। इस चैलेंज को स्वीकार कर लिया और मुगावली जेल में जाके एक अस्थायी ब्रह्मा कुमारी का सेंटर स्थापित कर दिया। और उसके बाद उन्होंने इस तरीके से चंबल के दस्युओं का हृदय परिवर्तन किया कि 500 लोगों का सरेंडर हुआ और सबका हृदय परिवर्तन किया। दादी के लिए आज जोरदार ताली बजाइए कि दादी हमारे बीच में नहीं है कि उनकी सोल तक आवाज पहुंचे कि हम उनको याद कर रहे हैं। एक सेकंड भी नहीं लगा और दादी ने देश के प्रधानमंत्री का यह चैलेंज स्वीकार कर लिया और मुगावली जेल में जाके दस्युओं का हृदय परिवर्तन करके दिखा दिया। एक दो नहीं, 500 चंबल उस समय बागियों से समाप्त हो गई। जिस कार्य को उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार जिनसे बहुत परेशान थी, देश की सरकार उनसे परेशान थी, उनका हृदय परिवर्तन दादी ने करके दिखा दिया। उसमें से शायद एक अभी मौजूद है जो इस संस्थान में परमानेंट मेंबर हो गए, डाकू पंचम सिंह। इस तरीके से दादी ने इस चैलेंज को स्वीकार किया। मैं जब उरई जनपद जालौन की उरई डिस्ट्रिक्ट जालौन में पोस्टेड था तो मैं हम लोग जाते थे, हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें भी जाती थी और डिस्ट्रिक्ट जेल में हम लोग कार्यक्रम करते थे। एक समर्पित बागी, वो किसी से बोलते नहीं थे, 24 घंटे केवल शांत बैठे रहते थे, किसी से वार्ता नहीं करते थे। हमने जेल में उनका इतिहास पता किया, कैसा भी किसी तरीके का कोई नशा भी नहीं करते, कोई शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं और शांत बैठे रहते हैं। उनका नाम था रामाश्रय तिवारी और फक्कड़, मुझे नाम याद है अभी। उरई सेंटर की बहन जी का कार्यक्रम वहां लगा, बहन गई, हम लोगों ने वार्ता शुरू की। बहन जी की वार्ता से वो इतना प्रभावित हुई है, रक्षाबंधन का दिन था, राखी बहन जी ने बांधी, उसके बाद वो इतना प्रभावित हुए कि उठ के खड़े हो गए और नाचने लगे। जो आदमी किसी से बात ही ना करता हो, शांत बैठा रहता हो, वो आदमी इतना प्रभावित हुआ इस ज्ञान से। सुप्रिंटेंडेंट जेल ने बाद में हमको बुला के पूछा, भाई साहब अगर आप इस आदमी को समझा सकते हैं तो पूरे जेल के बंदी भाइयों को समझा सकते हैं। ये किसी बोलते ही नहीं, चुपचाप अपने बैठे रहते हैं, सब देखो तब शांत। जब से इस जेल में आए हैं सब बैठे रहते, कोई उनका व्यक्तिगत इतिहास हमने लिखा। तो बात हम यहां पे आ रहे हैं सीधे इस टॉपिक पे, हेल्दी एंड लॉफुल सोसाइटी। हम किस तरीके से जनता को न्याय दें, त्वरित न्याय कैसे दें, हमारी व्यवस्था में एक किरण हमको दिखाई पड़ रही है, एक रोशनी हमको दिखाई पड़ रही है। हमारा जो सिस्टम है इसमें, सुप्रीम कोर्ट के सिस्टम में एक नेशनल लीगल एड सर्विस, हमारे तमाम विद्वान अधिवक्ता भ्राता यहां बैठे हुए हैं उनको मालूम होगा, एक नेशनल लीगल एड सर्विस है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जिसको कहते हैं। उसके नीचे स्टेट लीगल एड सर्विस है, हर स्टेट में स्टेट लीगल एड सर्विस है और स्टेट के हर जिले में डिस्ट्रिक्ट लीगल एड सर्विस एंड अथॉरिटी है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। ये ऐसे प्राधिकरण हैं जहां पे निःशुल्क किसी भी निर्धन व्यक्ति का या मजबूर व्यक्ति का निःशुल्क मुकदमा की पैरवी करने का प्राविधान है। इनके अपने लॉयर्स होते हैं जिनकी फीस गवर्नमेंट देती है, वो व्यक्ति का मुकदमा लड़ते हैं। हमारे सिस्टम में रहना, हमको इसी सिस्टम में है तो हम सिस्टम के तहत बात करते हैं और अपना सुझाव भी रखते हैं। यदि हमारा ये ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधि नेशनल लीगल एंड सर्विस में नामित हो जाए और नेशनल लीगल एड सर्विस ऐसे बड़े बड़े संस्थानों के प्रतिनिधि को अपने यहां नामित करता है, और क्योंकि जब हम मथुरा में थे तो वहां पे सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर को नेशनल लीगल एड सर्विस में नामित किया गया था एज ए मेंबर। अगर हमारा कोई भी बीके और भाई बहन प्रयास करके नेशनल लीगल एड सर्विस में नामित हो जाता है तो उसके माध्यम से हम स्टेट लीगल एड सर्विस में अपना प्रतिनिधि बना सकेंगे और फिर डिस्ट्रिक्ट लीगल एड सर्विस में जो हमारे भाई और बहन हैं, बीके भाई बहन हैं, उनको पैरा लीगल वॉलंटियर के रूप में हम नामित करा सकेंगे। अगर हमारे भाई और बहन पैरा लीगल वॉलंटियर के रूप में डिस्ट्रिक्ट लीगल एड सर्विस में नामित हो जाएंगे तो हम इस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत हर गांव स्तर पे जहां हम चाहेंगे वहां विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन करेंगे और लोगों को बेसिक जानकारी दे सकेंगे लॉ के बारे में और उनको आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पावर के बारे में जानकारी दे सकेंगे जिससे कि उनको सही समय पर सही न्याय मिल जाए। न्याय मिला अगर इतना विलंब हो गया, पूरी पीढ़ी मुकदमा ही लड़ते लड़ते गुजर गई तो क्या वर्षा जब कृषि सूख गई, जब खेती सूख गई तो बारिश से क्या फायदा। हर इंसान को ये उसकी ख्वाहिश होती है कि मुझे न्याय मिले, सही मिले और सही समय पे मिले। सही समय पे अगर न्याय नहीं मिला क्या फायदा। मेरा सबमिशन है, अम्बिल सुझाव है, जो भी बीके भाई बहन समर्पित होके कार्य करना चाहते हैं, जो भी इसमें रुचि रखते हैं, अगर जिला स्तर पे पैरालीगल वॉलंटियर के रूप में वो अपना नाम दे देंगे नामित हो जाएंगे। और ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट जज नहीं है जो ईश्वरी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय से परिचित ना हो और वो नामित हो जाएंगे। उनको एक अवसर प्रदान हो जाएगा, एक अवसर प्राप्त हो जाएगा सेवा करने का, जनमानस की सेवा करने का एक अवसर प्राप्त हो जाएगा। लोग रुचि लेते हैं, जानने की बहुत रुचि लेते हैं रिटायरमेंट के बाद। जब हमने डिस्ट्रिक्ट लीगल एड सर्विस का हाथ पकड़ा, मैंने कहा सरकारी सेवा से रिटायरमेंट होने के बाद मैं ये कार्य करूंगा, और हमने लखनऊ जनपद के तमाम इलाकों में जिला विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया। लोग बहुत रुचि रखते हैं, कुछ पैनल लॉयर्स को ले गए कि आप बेसिक बेसिक धाराओं के बारे में उनको बता दें। तो भाइयों, मैं अपनी बात इस सेंटेंस के साथ समाप्त करता हूं, हम और आप सड़क को किलोमीटर में नाप सकते हैं, दूध और पानी को लीटर से नाप सकते हैं कितने लीटर है, किसी वस्तु को क्विंटल और मैट्रिक टन से नाप सकते हैं, लेकिन इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो भाई और बहन रहते हैं उनमें कितनी स्पिरिचुअल पावर है, कितनी आध्यात्मिक ऊर्जा है, इसको नापने का कोई पैमाना ही नहीं है। ऐसा मैंने अनुभव किया है, इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा यहां पे है उसको नापा ही नहीं जा सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।